जान लिया, सब अपन जान चुके हैं। आप सम्यक चारित्र शुरू किया था कि थोड़ा ये समझ लें कि ये क्या चीज़ है, चारित्र किस तरह का होना चाहिए और चारित्र की परिभाषा क्या बनाएंगे या जैनाचार की परिभाषा क्या बनाएंगे। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए वे नियम उपनियम जिनके द्वारा हम अपने प्योर स्टेज में पहुंच जाते हैं, जिसमें हम अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं, उसके लिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा बनाए गए नियम उपनियम, ये कहलाएगा जैनाचार। जैनाचार की परिभाषा क्या बनी कि ऐसे उपनियम, नियम उपनियम जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बनाए गए, पर्पस क्या है, आत्म प्राप्ति, आत्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा बनाए गए नियम उपनियम वो जैनाचार के अंतर्गत आएंगे। कहते हैं फिर अब अलग अलग भूमि के अनुसार भगवान ने हमें नियम उपनियम बनाए। श्रावक के लिए अलग नियम उपनियम बनाए हैं, श्रवण के लिए अलग नियम उपनियम बनाए। कहते हैं ये श्रावक के मायने क्या होता, तो कहते हैं जो श्रद्धावान है, जो विवेकवान है, जो क्रियावान है वो श्रावक है। श्रावक श्रद्धावान भी होना चाहिए, विवेकवान भी होना चाहिए, क्रियावान भी। ये काम नहीं चलेगा कि श्रद्धा है हमारी और अज्ञान है, ये मामला गड़बड़ है। आप श्रावक नहीं कहलाएंगे, आपको ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो बहुत जल्दी छुटकारा पा लेते लोग। कछु गलती भी कर दे बड़ी से बड़ी हो, कहते महाराज का करें अज्ञानी, क्षमा करो हम तो श्रावक। कहते ये मामला गड़बड़ है, विवेकवान होना चाहिए श्रावक को। अपनी अज्ञानता को अज्ञानता स्वीकार करना अलग चीज है, लेकिन क्यों है अज्ञानता, ये भी आपका अपराध है। आप ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया। अज्ञान हो जाने से आपको माफ नहीं किया जाएगा, आपको श्रावक के पद से नीचे उतार दिया जाएगा। आपने ज्ञान क्या हो, जब दुनिया का ज्ञान प्राप्त किया तो ये ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त किया आपने, मोक्ष मार्ग का। तो कहते श्रद्धावान होवे और विवेकवान। विवेक का मतलब ऐसा ज्ञान जो अनुभव से प्राप्त हुआ। शास्त्रीय ज्ञान हो सकता है, नहीं भी हो गए उसको, लेकिन इतना ज्ञान तो है, विवेक तो है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इतना ज्ञान, इतना छोटा ज्ञान तो होना है, इतना एक लाइन का, इतना भेद विज्ञान, उसी को विवेक कहेंगे। विवेक कर सके वो आत्मा और शरीर के बीच विवेक कर सके, अपने पराये के बीच सौ अपर के बीच विवेक कर सके, इतना ज्ञान, इतना विवेकवान तो होना चाहिए। फिर कहते क्रियावान, जितनी उसकी हिम्मत हो गए उतना जो है अपने आत्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करे। उद्देश्य उसका आत्म स्वभाव की प्राप्ति, ऐसी चीजें नहीं करेगा जिससे आत्मा कलुषित होती हो, पतित होती हो, जिससे आत्मा का उत्थान होता हो, वो सारा आचरण करेगा, इसलिए तो श्रावक है ये। अब श्रावक में भी क्वालिटी रहेंगी, श्रावक के भी भेद कर दिए कि एक होगा
क्रियाओं की गिनती है,
क्रियाओं की तो गिनती है लेकिन क्रिया के पीछे उद्देश्य नहीं है, तो चाहे जितनी क्रिया करते रहो उनका कोई लाभ नहीं होगा। तो श्रावक के भेद कर दिए कि कितनी कितनी क्रियाओं करने वाला कौन सा श्रावक, उसको नॉमिनेटेड कर दिया, इस नाम दे दिए कि भाई सबसे पहले तो पाक्षिक श्रावक, फिर नैष्ठिक श्रावक और फिर साधक श्रावक। पाक्षिक श्रावक वो है जो अपने धर्म का पक्ष लेता है। कहते पक्ष क्या है, पांच अनुव्रत, ये हमारा पक्ष है। जो अपने धर्म के पक्ष को या कि भगवान के द्वारा बताए गए पांच व्रतों को अंगीकार कर लेता है वो पाक्षिक श्रावक है। नैष्ठिक श्रावक और निष्ठा हो गई, उसकी आस्था हो गई, अब वो बारह व्रतों का पालन करता है। अगर बारह व्रतों का पालन करता है तो फिर वो नैष्ठिक श्रावक, पहली प्रतिमा से भी नैष्ठिक श्रावक मान लेते हैं, दूसरी प्रतिमा से भी मानते हैं, दूसरी प्रतिमा में बारह व्रत आते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं साधक श्रावक। अब सामान्य भी व्यक्ति होए और आखिरी समय भगवान के जैसे बताए गए मरण की संलेखना की प्रक्रिया है, उस संलेखना की प्रक्रिया पूरी करके मरे तो वो साधक श्रावक कहलाए, चाहे वो पाक्षिक हो गए चाहे वो नैष्ठिक हो। साधक श्रावक तो आखिरी समय उसकी संज्ञा दी जाती है कि जो आखिरी समय अपने संलेखना पूर्वक मरण को प्राप्त। इस तरह तीन जो है श्रावक के भेद कर दिए। उधर श्रमण, श्रमण है श्रावक है तो श्रमण है, तो कहते श्रमण के मायने क्या है। श्रम का अर्थ होता है तपस्या, जो निरंतर तपस्या में लगा है, काहे के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, उद्देश्य कर्म निर्जरार्थम परिशोडव्या परिशहा। जब भी हम कोई उपसर्ग परिषय या की तपस्या अंगीकार करते हैं तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कर्म निर्जरा का। तो कहते हैं कि जो निरंतर कर्मों की निर्जरा के लिए तपस्या करता है वो श्रमण है, या कि श्रम शब्द का प्राकृत में अर्थ है सम, समन, शमन भी बोलते हैं संस्कृत में, प्राकृत में शमन बोलते हैं। समन मतलब समतावान है, जो समतावान है वो शमन है, या जो निरंतर तप रूपी श्रम करता रहता है वो शमन है। श्रम है पुरुषार्थ है, जो मोक्ष पुरुषार्थ निरंतर कर रहा है और समता पूर्वक कर रहा है वो श्रमण कहलाए। दोनों चीजें आ गई, मोक्ष पुरुषार्थ करने वाले को श्रमण कहो तो भी समतावान होना पड़ेगा, और समतावान को श्रमण कहो तो मोक्ष पुरुषार्थी होगा, वही समतावान हो सकता। वैसी समता तो बहुत लोग रख ले, नई मिली चीज तो समता रखें, लेकिन कहते नहीं मोक्ष मार्गी होकर के समतावान हो वो श्रमण। तो ये श्रमण की परिभाषा हो गई। श्रमण के भी कैडर, श्रमण के चार भेद कहते ऋषि, यति, मुनि और अंगार। ये चारों प्रकार के श्रमण होते हैं। ऋषि किसे कहते हैं? जो विद्यों के धारी है, साधु हैं, श्रमण है, समतावान है, मोक्ष मार्गी है, लेकिन उनको विद्धि सिद्धि हो गई वो विद्धि, वो कहलाएंगे ऋषि। फिर कहते हैं यति, जो मुनि बनकर के ऐसी साधना कर रहे हैं कि अब उन्हें श्रेणी चढ़ना शुरू कर दी, छपक श्रेणी या उपसम श्रेणी में जो चले गए हैं, आठवें गुणस्थान में चले गए, वो सब यति, क्योंकि बहुत प्रयत्नशील है वो। यत्न शब्द से बना है प्रयत्न, तो यति शब्द जो है यत्नवान से बना है। हाँ, यत्नाचार जो रखता है वो यति कहलाएगा, छपक श्रेणी में चढ़े। फिर कहते हैं कि मुनि, तो अपन तो सामान्य रूप से किसी को मुनि कह देते, कैसे ऐसा मामला नहीं चलेगा, जो अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान से युक्त है मुनि, अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान से युक्त को मुनि कहना चाहिए। हमारे लिए आप मुनि श्री लिख देते हैं, ठीक है चलेगा, उनकी स्थापनाएं कर दी है, ओरिजिनली हम नहीं है। अब इसके बाद और जितनी उपाधियां लगा उतरा श्रावक की करत है बिगाड़, सौर उपाधि लगा दे, सौर मजा स्वामी लगा दे, मगर है नहीं उसका कोई मजा नहीं है उसका, क्योंकि मजा तो आएगा जितने हो उतने का, अकेले उपाधि लगाने थोड़ी मजा आता है, मगर जी है अब लगाते हैं। फिर कहते हैं कि अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान हो नहीं सकता, तो आज वर्तमान में तो मुनि पद भी बहुत कठिन है। फिर कहते अनुभव, जिसने ग्रह का त्याग किया है और साधना में लगा हुआ है, ऐसे प्रकार के तो आज मिल सकते हैं, सिर्फ अनगार मिलेंगे, घर छोड़ा है और साधना कर रहे हैं, नहीं अबे मुनि आए, नहीं यति आए, नहीं ऋषि आए। ऐसे श्रमण जो है चार प्रकार के श्रमण, ये श्रमण का सबका क्लासिफिकेशन हो गया, श्रावक का भी हो गया श्रमण का। अब शुरू करें अपन श्रावक से। श्रावक को सबसे पहले मेन क्वालिटी उसकी क्या होनी चाहिए, क्या क्या उसके भीतर चीजें, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, उसको श्रावक का कैडर कब मिला है। इतना तो हो गया कि वो श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है, तो कौन कौन सी क्रिया करता है, श्रद्धा कैसी है, विवेक कैसा है उसका, तो कहते चार चीजें। हालांकि ये अपन लोग इस तरह से कभी पढ़ते नहीं हैं इस क्रम से, पर अच्छा मुझे लगा कि ये क्रम होना चाहिए। श्रावक को पहले नंबर सत्वेषु मैत्रीम का पालन करना चाहिए। श्रावक वही है जो प्राणी मात्र से मित्रता रखता है, मैत्री भाव रखता, मित्रता नहीं, क्योंकि मित्रता होगी तो शत्रुता भी होगी, इसलिए मैत्री भाव। और मैत्री का अर्थ क्या है, दूसरे को दुख न होवे इस प्रकार की भावना, इसका नाम मैत्री भाव। यहां सब जीव दुखी हैं, मैं भी दुखी हूं, इन सबके दुख में मैं निमित्त न बनूं, वैसे ही दुखी है मगर मैं निमित्त न बनूं, यहां से शुरुआत होती। इतना विवेक होता उसके लिए, इतनी भगवान पर उसकी श्रद्धा है, यही उसकी पहली आचरण की सीढ़ी है कि सब तो यीशु मैत्री, किसी को पीड़ा ना हो, तब फिर उसका देखो व्यवहार कैसा हो जाएगा। मेरी वजह से किसी को पीड़ा पहुंचे तो मैं हाथ खींच लूं, यहीं से शुरू होता। अभी कोई नियम यन नहीं लिया उसने। दूसरा कहते गुणशु प्रमोदम, जहां भी कोई थोड़ा गुणवान दिख जाए वहां हर्ष होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि मुझे ईर्ष्या हो जाती है कोई गुण देख करके दूसरे के, कहते नहीं, गुण देख करके जिसके भीतर प्रमोद भाव आने लगे, हर्ष आने लगे कि अरे वाह इनके भीतर सम्यक दर्शन, इनका कितना निर्मल सम्यक दर्शन है, इनकी कितनी अच्छी श्रद्धा है, इनका कितना अच्छा ज्ञान है, अरे ये कितने आचरणवान है भाई, ऐसा किसी को श्रद्धा ज्ञान और आचरण से युक्त देखे तो उन गुणों को, क्योंकि गुण तो अपने यहां तीन ही माने, जय रथयात्रा है, तीन गुण है, ये गुण जिसके भीतर देखे तो फौरन जो है उत्साहित हो जाए, उसको देख करके हर्ष हो जाए। कहते मुख पर जो है प्रसाद आना चाहिए, अर्थात हर्ष हो जाना चाहिए कि हाँ ये अपन अपने संबंधी को देख करके हर्षित होते हैं, ठीक उसी तरह ये कह रहे हैं कि जो गुणवान है मोक्ष मार्गी है उनको देख करके हर्ष होना चाहिए। और क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा करतु, कहीं कोई दीन दुखी दिखाई पड़ जाए तो उसके ऊपर तुरंत करुणा करो। सहज एडॉप्टेड नहीं, सहज भाव। दुखी है तो अपना मन भी जो है अनुकंपा जिसको बोलते हैं, भीतर भीतर अपना मन भी कप गया, तुरंत ध्यान आ गया कि ऐसा ही दुख तो सबको है, ये संसार पूरा दुखमय ही है, ऐसा विचार करता है तुरंत और करुणा ही करता है। तो कृपा परत्वम कर कुछ नहीं पा रहा है ना, उसके दुख दूर करने का कोई उपाय कर रहा है, लेकिन भीतर भीतर भीग तो गया, भाव तो भीग गए उसके, इतना ही पर्याप्त है। फिर कहते अविनेशु माध्यस्थ भावम, जो मोक्ष मार्ग की बात में जिनको नहीं सुहाती है, जो सच्चे रास्ते पर चलना पसंद नहीं करते हैं, उनके प्रति तटस्थ, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना, न निंदा करना न प्रशंसा करना, चुपचाप बरका के निकल गए। ऐसा उसको अपनी भाषा में कि भैया चुपचाप रहो, चिमाने रहो, गम खाओ, इनको नहीं या नहीं आएगा समय, लेकिन भीतर भीतर सत्वेशु मैत्री तो है, मैत्री फिर भी उस व्यक्ति से है। अभी ने यीशु माध्यस्थ भाव रखा है, तो माध्यस्थ भाव का मतलब ये नहीं है कि उपेक्षा कर दी उसकी, कि तो उपेक्षा में भी द्वेष छिपा है, न राग करना न द्वेष करना, बस तटस्थ रहना उससे, क्योंकि विनयवान नहीं है ये, सच्चे रास्ते पर चलने वाला नहीं है, इसलिए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं, कोई सरोकार नहीं। जिस दिन आकर के पूछा गया कि सस्ता रास्ता क्या है, मैं तैयारी खड़ा हूँ, बता दूंगा उसको कि सच्चा रास्ता ये है, अब मेरी बात सुनने लगा है तो फिर ठीक है, फिर उसके प्रति गुणीशु प्रमोदम आ जाएगा उसको। ये चार चीजें सबसे पहले शास्त्र के जीवन में आनी चाहिए कि मैत्री भाव, प्रमोद भाव, करुणा भाव और माध्यस्थ भाव, इन चार से श्रावक जो है समन्वित हो, फिर साधु तो उसकी बात ही छोड़ दे। ये चार चीजें जिसके भीतर नहीं, वो तो चाहे कितनी क्रियाएं, इसलिए तो अपन आज इन क्रियाओं का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, प्रति व्यक्ति का प्रति नियम व्रत नियम लेने के बाद भी कोई ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्यों? क्योंकि ये चार बातें वो मिस ही कर रहा, लगातार मिस कर रहा। हम तो व्रती हैं, सो अब चाहे कोई उकिल पत्र है, हमें क्या करने, हमें तो अपने उपवास से मतलब है, हमारा उपवास होगा, हमारी पूजा होगी, अब तुम्हारे घर में चाहे जो उतरे हो, लेकिन दीन दुखी को देख करके करुणा नहीं आ रही है और आप पूजा पाठ में लगे हो, हाँ कर लो पूजा पाठ कर लो, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं लेना कि पूजा पाठ नहीं करो वही में लगे रहो, जो भी ना ले लियो, नहीं तो आप गड़बड़ हो जाए, फिर कहो कि हाँ आपने तो कही थी उसमें।
सामायिक के समय जो चिंतन चलता है तो क्या उसमें कर्मों की हानि या
निरंतर
होती है? निरंतर निर्जरा चिंतन चले तो
हाँ, नहीं अच्छा नहीं चले, बुरी चीज का भी चिंतन चल रहा है, मान लो पर पदार्थ का चिंतन कर रहा है, लेकिन निरी वित्ती हवे ज्यादा साहू जम किंची भी चिंतन तो त्रिव संग्रह में दी कि चाहे जो विचार करे करो, कोई विचार करो, सांसारिक चीजों का विचार करो, नहीं करो शुद्ध आत्मा का, नहीं है ज्ञान सांसारिक चीजों का, लेकिन निरी वित्ती उसमें रचना पचना नहीं, जो जैसा उसका स्वभाव है वैसे ही विचार करना। ये पेन है, हाँ ठीक है पेन है, लिखने के काम आता है, न मेरा है न तेरा है, खत्म। आप ऐसा पेन का विचार करो करो, तो उसमें निर्द्रा होगी। और अगर कोई व्यक्ति जो है चाहे अपनी आत्मा का विचार भी करे, मनो उसकी दृष्टि संसार पे टिकी है, तो कहते उसको नहीं होगी कर्म के। ये जितनी कषाय मंद होगी या जौन सी कषाय होगी उसके अनुसार कर्मों की निर्द्रा। अनंतानुबंधी है और मंद कषायी है, फिर भी अनंतानुबंधी की मंदता में घानी में पेल देने पर भी मुनि होकर के चुप रहता है, मगर कर्मों की निद्रा कौन सी कर रहा हो? कछु नहीं। हो सकता है कि एक चौथे गुण स्थान वर्ती जो है भोजन कर रहा हो, उससे असंख्यात गुणी निद्रा कर रहा हो, वो भोजन करते हुए जे जो है परिसर सहन करते समय भी बाहर से दिख रहा है कि कितना परिसर सहन कर रहे हैं, लेकिन भीतर में परिणामों की निर्मलता न होने से निद्रा नहीं हो। अगर निर्जरा की बात करें, निरपेक्ष। अब देखना, अपन बीच में जो है अपन ने भावों की चर्चा कर ली, ये भी मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ, ये भाव रहेंगे, आशा यही था कि अगर ये भाव रहेंगे और फिर हम क्रिया करेंगे तो हमारी क्रिया जो है वो सार्थक होगी इन भावों के साथ ही। फिर इसके बाद अब करें क्या और अब कार्य बताओ, मैंने अपन लोग करने की भाषा जानते हैं इसलिए कहना पड़ा। और जिसका जीवन जिसका मन ठीक होवे सो वो चाहे जो करे उसको कोई हाथ नहीं पकड़ने वाला। जो आत्मा अनुशासित है उसको बाहर से किसी अनुशासन की आवश्यकता नहीं, अनुशासन उनके लाने हैं जो कि आत्मा अनुशासित नहीं हो पाते। तो कहती अब चलो भैया तुमसे तो नहीं हो, तो अब चार बातें तो करो दिन भर में, कौन कौन सी? दान पूजा शील और उपवास, चौव्यानम साव्यानम धम्मो, सबसे पहले ये चार धर्म श्रावक के कहे। दान देव, चारों प्रकार का दान देव, जैसी तुम्हारी गुंजाइश हो वैसा देव, पात्र पात्र का विवेक करके देव, करना दान देव तो चाहे जिसको देव कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप पात्र दान देते हैं तो पात्र पात्र का। चार प्रकार का दान है, कौन सा चार प्रकार का दान है? तो आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान, या कि उपकरण दान, मोक्ष मार्ग में जो चीजें आवश्यक है उपकरण, ये भी ज्ञान का उपकरण है। पिछी का मंडलू जो है शौच उपकरण है, या कि संयम उपकरण है, ये भी उपकरण है। चश्मा दे दिया वो भी उपकरण है कि भैया ठीक है, ये सब आ जाएंगे उस प्रकार के दान। लेकिन पात्र को देना इतना भी, हाँ कुपात्र के हाथ में नहीं पहुंच जाएंगे, मोक्ष मार्ग की चीजें हैं। आहार दान तो गरीब आदमी को भी रोटी खुआ सकत, माने उससे तुम्हारा परमार्थ नहीं होने वाला, उसको जिसने की रोटी बनाने का प्रपंच छोड़ दिया उसके हाथ में देना, जो अपने हाथ से बना सकता है उसके हाथ में देने में तो कोई बात नहीं, अभी तो उसने पाप छोड़ी नहीं, जिसने पाप छोड़ दिया उसके हाथ। ये उसके पीछे आहार औषध और अभय दान और ज्ञान दान या कि उपकरण दान, ये चार प्रकार का दान देगा, जितना जिसकी शक्ति होगी ऐसा है। दान पूजा नित्य जो है भगवान की पूजा करना, पूजा का मतलब क्या है? भगवान के गुणों से अनुराग होना, यही भगवान की पूजा है। तो ये हो गई मन से भगवान के गुणों का वर्णन करना, ये वचन से पूजा हो गई, भगवान के हाथ इत्यादि जोड़ करके माथा टेकना, ये सब ये काय से पूजा हो गई। मन वचन काय तीनों से जो है भगवान की पूजा करना रोज जो है, ये काम आवश्यक हो गया श्रावक के लिए, जरूरी कंपल्सरी है ये, इसमें कोई वो नहीं हो सकता, रियायत नहीं हो सकती, ये बात ऐसा नहीं हो सकता जी। हो सकता है कि एक घंटा पूजा की जगह आधे घंटा कर लो, समझ नहीं, लेकिन पूजा नाम की चीज, पूजा तो करनी पड़ेगी, इसलिए कि उसको बांध रहे हैं कि इतने घंटे तो उसके धर्म ध्यान में लग जावे, नहीं तो पूरा समय उसका पाप में लगने वाला है। उसको करनी है, गृहस्थी करनी है, पर इतना समय दान देते समय अच्छे भाव हो जाएंगे तो उतना सेफ हो गया, पूजा करते समय अच्छे भाव हो जाएंगे उतना सेफ हो गया। शील का पालन करना, पांचों इंद्रियों के विषयों को लिमिट कर लेना, कितना भोगना है, पांचों इंद्रियों के विषय तो बहुत मिले हुए हैं आपके लिए, लेकिन आप अपने उन पांचों इंद्रियों के विषयों को लिमिट कर, शील का पालन करना, यही। शील का मतलब स्वभाव भी होता है और शील का अर्थ ब्रह्मचर्य भी होता है, दोनों चीजें हैं, अपन अपनी भाषा में उसको ब्रह्मचर्य कह देते हैं, तो ब्रह्मचर्य भी रखेगा। ब्रह्मचर्य कहते हमने तो ब्याह करो का ब्रह्मचर्य रखें, तो कहते इतना ही तो ब्रह्मचर्य होगा, और सबके प्रति मन अच्छो रखो, एक ही तक सीमित हो गए, अनंत की तरफ हो सकता था ध्यान लेकिन एक में सीमित, ये भी ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। देखो कम नहीं है ये, माने जो हमारी आकांक्षा अनंत हो सकती थी हमने सीमा बना ली, नहीं तो फिर तो चक्रवर्ती के 96,000 रानी हैं तो वे तो बड़े भोगी कहलाने। कहते हाँ है 96 नियोग से मिली हैं, लेकिन वे उनमें तटस्थ हैं, वे अपना जानते हैं कि इतनी सीमा है, शक्ति उनकी बहुत है। तो ये हो गया शील का पालन, इस तरह से शील व्रत हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं चौथे नंबर पर उपवास। उपवास के दो अर्थ हैं, चारों प्रकार के भोजन का त्याग करना उपवास है, या कि अपने आत्मा के निकट रहना ये उपवास है। दोनों दिए, कषायों का त्याग करना भी उपवास है और भोजन इत्यादि बाह्य सामग्री का त्याग करना ये भी उपवास है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि कषायों अकेले का त्याग से काम नहीं चलेगा, भोजन के त्याग के साथ कषाय का त्याग करना, नहीं तो बहुत मजा है, रोज उपवास है कि हमने तो कषाय नहीं करी आज, दोनों चीज। ये तो हो सकता है कि भोजन का त्याग करो और कषाय को नहीं कर पाओ, लेकिन जो कषाय का त्याग करेगा उसका भोजन का त्याग तो नियम से होगा, क्योंकि वो कहेगा कि भाई आज तो जो है हमारा खाने तक का भाव नहीं हो रहा है, अब काय को पाप करें अपने उस बनाने की, लोभ ने लोभ उसका कम हो गया है, उसको संतोष है कि ठीक। इस तरह से ये चार हैं, दान पूजा शील और उपवास, और विशेष रूप से कहे गए छह, देव पूजा गुरुपास्ति। हाँ ये भी उसी के साथ जोड़ लें, इसमें सब आ जाते हैं, देव पूजा गुरुपास्ति शास्त्र स्वाध्याय संयम तप और त्याग। अब चार के अंदर इनको डालना चाहो तो सब उसमें आ गए, संयम तप और त्याग ये सब क्या में चले गए, दान में चले गए, शील में चले गए, उपवास में चले गए, पूजा जो है गुरु पास थी, गुरु की भी करना पड़ेगी पूजा, और हाँ और शास्त्र की पूजा, शास्त्र की पूजा क्या है, शास्त्र का स्वाध्याय शास्त्र की पूजा है, गुरु की पूजा क्या है, हाथ पांव थोड़ी दबाना, बैठो पांच में उनसे कछु बातें सीखो, और देव की तो गुणगान करो भाई, उसके बिना ही चलेगी। गुरु की पूजा का मतलब ये नहीं है कि सुबह से थाली ले आने के लिए आओ भी अपनों काम कर रहे हैं और आप जो है उदा के चंदन और पूरी पूजा विस्तार लो हम तो घंटा भर का पूरी गुरु की स्कीम के लिए तो बाधा पहुंचा देगी। उनकी पूजा यही है कि गुरु पास थी, उनकी उपासना करना, उपासना मतलब निकट बैठ करके उनसे अपने कल्याण की दो बातें सुनना, ये गुरु पास थी। या कि अब रोज रोज नहीं मिलेंगे गुरु तो कहते उनको अपने पास रखो, गुरु पास थी, उनके निकट रहो या उनको अपने निकट रखो, दोनों गुरु पास्ती में आएंगे। और पूजा में तो भगवान के गुणों की हमने देव पूजा तो कर ही ली कि देव पूजा में तो मन वचन काय तीनों को पूजा में लगाएंगे। शास्त्र स्वाध्याय तो कहते हैं कि निरंतर जो भगवान ने कहा है उस सूत्र वचन को पढ़ो, भगवान के वचनों को रोज पढ़ना, और वैसे स्वाध्याय का अर्थ है अपने आत्मा का निकट से अध्ययन करना, इसका नाम स्वाधि आत्मानम स्वाध्याय अध्ययनम, अपने आत्मा का अत्यंत निकट से अध्ययन करना ये स्वाध्याय है। और अपने आत्मा का अध्ययन करने के लिए जो निमित्त बनेंगे उसके बिना तो अपन कर ही नहीं सकते, शास्त्र के बिना तो कैसे करेंगे, तो कहते इसलिए श्रावक के लिए स्वाध्याय के साथ शास्त्र स्वाध्याय लगा कि शास्त्र का स्वाध्याय करना। और संयम तो अपन समझते हैं कि संयम रखना पांचों इंद्रियों के, क्योंकि इंद्री संयम होता है और एक प्राणी संयम होता है, ऐसा संयम जिसमें प्राणियों का घात कम से कम हो गए चीजों में, सब खाने पीने सुबह से शाम तक की, और इंद्री संयम अपने इंद्रियों के पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना थोड़ा थोड़ा। संयम की एक परिभाषा सीधी सी देता हूं मैं कि रोज हम मीठा खाते थे और चार चम्मच खाते थे तो हमारा संयम है, आज तो हम दो चम्मच खाएंगे, संयम है, ऐसा करने में आसानी है। चार चम्मच लेते थे भाई शक्कर, चार चम्मच डालते हमारी उसमें चाय में, दो चम्मच डालना, आज हमारे हमने संयम रखा है, शक्कर का रस का हमारा संयम है, लिया तो है लेकिन नियंत्रित होकर। और तप में बदलना चाहो भैया आज तो शक्कर नहीं लेंगे, शक्कर ही का त्याग तप हो गया, रस परित्याग नाम का तप हो गया, आज तो एक भी चम्मच नहीं लेना है। इस तरह से जो है संयम तप और त्याग दूसरे के उपयोग में आवे ऐसी चीज उसको दे देना, अपनी चीज थी दूसरे के उपयोग में आने वाली थी वो त्याग हो गया। रोज अपन त्याग करेंगे, ज्ञान दे सकते हैं, श्रद्धा दे सकते हैं, आचरण दे सकते हैं, वास्तव में देने योग्य चीजें तो तीन ही है, बाकी तो अपन धन इत्यादि के दान त्याग करते हैं वो तो है ही त्याग, वो तो दान में आ ही जाएगा, चार प्रकार का दान ही त्याग है। पर कहते हैं कि और अगर आप आगे बढ़ो तो किसी को दो धर्म की बातें सुनाओ, आपने उस दिन ये भी जो है दिया उसको, अपनी श्रद्धा इतनी मजबूत रखो कि दूसरा आपको देख के श्रद्धावान हो जावे, तो आपने उसको दान दिया, उसके मोक्ष मार्ग बनाया, अपने आचरण को इतना पवित्र रखो कि दूसरा भी उससे शिक्षा ले लेवे, तो ये तो स्वतः दी, इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला। और साथ में ये भी है कि अपने पैसे का सदुपयोग करो, जहां इस तरह की बातें हो उन सब में थोड़ा थोड़ा अपना द्रव्य लगाना चाहिए। ये सब त्याग तो बहुत आसानी से बन जाता है, देखो पूजा करी तो उसमें द्रव्य का त्याग किया कि नहीं, गुरु उपास्ती करी तो उसमें समय का त्याग किया कि नहीं, स्वाध्याय करा है तो उतनी देर के लिए कषाय का त्याग किया कि नहीं, ये तो सभी में है त्याग। तो प्रतिशत अगर आपके एक भी आ गया इसमें से, हमने तो एक बार ऐसी व्याख्या भी करी थी कि अगर एक आ गया तो सब छों आ गए, अकेले देव पूजा में छह ही हैं, क्योंकि परम गुरु कौन है, देव ही तो परम गुरु है, आपने उनकी पूजा कर ली तो गुरु की पूजा हो गई, और शास्त्र उनसे जुदा थोड़ी है देव से, देव के माध्यम से शास्त्र निकला है, तो हमने देव की पूजा करके शास्त्र की पूजा भी कर ली, और उतनी देर तक हमने पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग किया, घंटा भर पूजा करी तो संयम हो गया और तप भी हो गया, हमने कोई चीजें नहीं ग्रहण करी, और त्याग जो लाए थे ठाट बाट से दब सो उसका हमने त्याग कर दिया, सब आ गए देव पूजा में, एक अकेले देव पूजा में। इसलिए लिखा है कि बड़े से बड़ा पाप शावक से हो जावे उसका प्रायश्चित सबसे पहला है, बाद के प्रायश्चित छोटे हैं, सबसे पहला ठाट बाट से भगवान की पूजा करना, यही प्रायश्चित। अपराध होने पर रोज के अपराधों को धोने का एक ही उपाय है कि वो पूजा करें। तो पहले परंपरा प्रचलन था इस चीज का, पहले जानते भले ही नहीं थे लोग कि का करे से का हो, मनोकन्या है, अब वो तो जाए नहीं वो तो, पर ऐसा नियम था। देव देव दर्शन करने का कितना बड़ा नहीं, माथा पटक के तो आओ ही तुम, भले ही कुछ समझ हो चाहे नहीं हो, दर्शन करके आओ, तिलक लगा के आओ। क्यों? अब जब अपन कर्म फिलॉसफी पढ़ते तो उसमें लिखा कि कर्म होते हैं जिनको हम हमारे वश में नहीं है कि जिनको हम तोड़ सकें, लेकिन निधत्ति निकाचित कर्म भी जिन बिंब के दर्शन करने मात्र से, साक्षात जिनेंद्र नहीं, जिन बिंब के दर्शन करने मात्र से निधत्ति निकाचित कर्म का क्षय हो जाता, इसलिए शायद बचपन से भेजते हों कि भैया और काम बाद में, दर्शन करे आओ पहले। पता नहीं कौन सा कर्म बंध गया होगा निधत्ति निकाचित, वो टूट जाए अगर दर्शन करे आए तो। कैसे उपाय लोगों ने जो है पुराने लोगों ने बनाए, इन सब की इंपॉर्ट ऐसे जो है श्रावक का, फिर अपन और नैष्ठिक श्रावक का बाद में समझेंगे।
दो तारीख का प्रवचन शुरू होता है,
त्याग करना उपवास और कषायों से बचना, इसका नाम उपवास, और कहते हैं कि पंच नमस्कार मंत्र का जाप करना, एक माला फेरना, एक उपवास हो गया।
अब महाराज जी उसमें केवल मेरे जो दिल में शंका है वो यही है कि आत्मा की माने जो कषायों से जो भाव बंद होते हैं उनको कम करना, यही एक उद्देश्य है पूरी फिलॉसफी का,
पूरी फिलॉसफी का उद्देश्य वही उद्देश्य, पूरे चारित्र के पीछे अपन ने जब शुरू किया था चारित्र, तो चारित्र के पीछे है क्या चीज, चारित्र क्यों लेना, मुझे राग द्वेष कम करना है आत्मा की स्वाभाविक स्थिति में आने के लिए, जो उसकी वैकारिक स्थिति है उससे बचने के लिए।
तो कषायों की मंदता के लिए क्या ये आवश्यक है कि उपवास किया जाए?
कषायों की मंदता के लिए तो आवश्यक है क्योंकि शरीर के प्रति राग है और उसके भोजन के प्रति राग है, ये दिखता नहीं है ऐसे न इस पकड़ में आता है।
नहीं, राग मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अमुक चीज खाना है या इस समय खाना है,
वो तो आशक्ति कहलाएगी जी, वो आशक्ति, वो बहुत इंडल्जिंग जिसको कहें, और ये तो अटैचमेंट है। अटैचमेंट जब बहुत अधिक हो जाता तब इंडल्जेंस हो जाती है, ग्रद्धता हो जाती है, फिर तो हमको अपने शरीर को भोजन चाहिए मिनिमम जितना आवश्यक है, पर इसमें फिर क्या देखना कि ऐसा चाहिए कि वैसा चाहिए, ये तो आशक्ति है, शरीर को भोजन देना है, भरा जा सकता है। तो कहते मुनि महाराज को कि गड्ढा भरना है जैसे, तो जैसे गड्ढा भरते हैं तो उसमें ये थोड़ी देखते हैं कि अब क्या क्या डालना है, कोई बढ़िया बढ़िया चीज डालना नहीं, भर देना। जैसे कि अग्निशमन, आग लगी हुई है, कौन देखता है कि कौन से वाले पानी से बुझाना है, बुझाओ जिस तरह बुझावे, तो इसी तरह से अग्निशमन के लिए भोजन करते हैं। पांच प्रकार की ये गोचरी है गाय जैसे, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर फूल लगे हों बगीचे में घुस जाती, पर अपने काम की घास खा करके आ जाती है, उसकी गोचरी वृत्ति है। तो कहती इसी तरह साधु जाता है बड़े से बड़े घर में चला जाएगा, उसके बाह्य वैभव को बिना देखे अपने योग्य जो भोजन है वो लेकर के वापिस आ जाता है। रखा तो सब है, उनने दिखाया भी सब है, देने तैयार है भी, तो सब आपके लिए हलवा देने तैयार है आप खा लो। तो कहते हैं अपने योग जो शुद्ध भोजन है उसकी कमिश्ना। इसी तरह से ये तो हो गई हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं तो वो भी राग है, और जब उसमें एक्स्ट्रा हम कुछ अपने अनुसार चाहते हैं तो वो ग्रद्धता ही है। तो कहते हैं कि उस दिन ग्रद्धता छोड़ो, भोजन की ग्रद्धता तो छोड़ी जा सकती, तो वो कहलाएगा संयम, और अगर उस भोजन को ही छोड़ दिया तो वो कहलाएगा तप। तो अपन जो उपवास करते हैं वो तप है, और भोजन की ग्रद्धता छोड़ने के लिए चाहे जैसी सामग्री मिल जाएगी मैं तो खा लूंगा, रूखी सूखी मिलेगी तो खा लूंगा, मैं कोई आकुलता नहीं करूंगा, ऐसा अगर आपने किया तो वो संयम कहलाएगा। और किसी किसी दिन आपको अब तब भी करना है कि नहीं, कोई भी प्रकार की सामग्री मैं खाऊंगा नहीं, आज शरीर को देऊंगा नहीं, मैं अपने शरीर की क्षमता देख रहा हूं कितनी है, ये कोई नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखिए। आप ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने शरीर से घृणा करके द्वेष करके आप अपने शरीर से कि नहीं जाऊंगा आज, तो वो अनशन कहलाएगा। अनेशन, भोजन की आकांक्षा होते हुए भी भोजन नहीं करना, ये तो अनशन है, और भोजन की आकांक्षा नहीं है इसलिए भोजन भी नहीं करा, अनेशन है, एशन ही नहीं, इच्छा ही नहीं है भोजन की, आज तो मेरा मन अपने आत्मा में लीन है इसलिए नहीं करा। या कि कई कई बार नहीं हो पाता आत्मलीन, तब भी हमें भोजन छोड़ करके अपने आत्मा की परीक्षा तो करना पड़ेगी कि बिना उसके रह सकते कि नहीं रह सकते, क्योंकि आखिरी समय संलेखना के समय जब भोजन जाएगा नहीं भीतर और आशक्ति बनी रहेगी तो बहुत दुखदायी होगी। शरीर तो स्वीकार नहीं कर
रहा,
हाँ अभ्यास है, शरीर तो स्वीकार नहीं कर रहा और आशक्ति बहुत है कि खा लेते तो कहते भैया पहले से सावधानी रखो कि अगर ऐसी स्थिति आ जावे तो छोड़ दे अपन, कि हमने तो कई बार उपवास की, हमने तो 10-10 उपवास करके देखे हैं, हमसे तो बन जाता है, क्या दिक्कत है, अब नहीं जा रहा है शरीर में तो हमने छोड़ा।
उपवास करें तो उसका पूजन करना
भी, हाँ दो तरह का होता है, गृहस्थ लोग जो करते हैं उपवास तो उसमें थोड़ी सी छूट रखते हैं, छूट ऐसी कि सुबह से नहा धो करके पूजा पाठ करेंगे और फिर अब घर गृहस्थी के काम भी करना है, बच्चों को भोजन भी बना के खिलाना है, सब कुछ करेंगे शाम तक, तो कहते एक अपना उपवास किया है बाकी सब आरंभ किया। और एक ऐसा भी होता कि उस दिन फिर हम ना नहाएंगे धोएंगे ना कुछ भी नहीं करेंगे, बस जैसे मुनि महाराज जी रहते हैं तो सुबह से शाम तक जो है वैसे ही धर्म ध्यान में लगे रहेंगे, कुछ काम ही नहीं करेंगे हम उस दिन घर का, और घर का भी नहीं करेंगे तो बस फिर मंदिर भी जाने का और कुछ भी आवश्यकता नहीं, मंदिर जाएंगे भी तो चले जाएंगे, पर ये प्रक्रिया बनती नहीं आज के समय में, अपन ऐसा कह दें तो लगता तो है कुछ नहीं करेंगे पर होता नहीं, आकुलता बहुत होती है, नहाया धोया नहीं तो बहुत आकुलता होती है, हाँ कोई प्रतिमाधारी हो गए तो फिर वो करे तो कर भी सकते।
उपवास की करनी चाहिए,
उपवास की नहीं कोई सी भी, देव गुरु शास की पूजा
हाँ, ऐसा नहीं है कि उपवास किया
कोई सी नहीं, देव गुरु शास की तो करना ही पड़ेगी, उसके बाद फिर आपको जो भी करना, हाँ उसमें कोई वो नहीं है, अष्टमी चतुर्दशी कर रहे हैं तो अष्टमी चतुर्दशी कर लेते हैं, उसमें कोई विशेष पूजा थोड़ी, एक तो नित्य पूजा और एक नैमित्तिक पूजा, किसी निमित्त से तो कर रहे नहीं, अपन सामान्य रूप से कर रहे हैं, अष्टमी चतुर्दशी शाश्वत पर्व है तो जो पूजा करना हो आपको अगर मन में आए तो 10 लक्षण की पूजा कर लो, 16 कारण की पूजा कर लो, जो पंचमेरु की जो करना वो, उसमें कोई वो नहीं है, कंपल्सेशन नहीं है। तो उपवास मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा,
मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था
आपका, आपको ऐसा लग रहा था कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम करने को तो जा रहे थे राग करेंगे तो सिवाय राग द्वेष और आकुलता के कुछ नहीं होने, तो पहली दृष्टि तो यही काहे के लिए कर रहे हैं, आकुलता कम करने के लिए, तो करके देख लो आकुलता कम हो रही कि नहीं, अगर नहीं हो रही तो दूसरा आप चुनो,
हाँ।
ये वाला तब अपने
वस्त्र है और मन होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए उसकी वजह से,
हाँ। इसलिए क्रम क्रम से रखें, उपवास करके देख लो, उपवास फिर भी आसान है, सबसे आसान, किसी किसी को उपवास आसान नहीं है, तो कहते हैं उन्नोदर कर लो, अपने भोजन से थोड़ा कम खा के देख लो, उन्नोदर तब कर लो, उन्नोदर भी नहीं है तो कहते हैं फिर वृत्ति परिसंख्यान कर लो, वृत्ति परिसंख्यान 10 चीजें बनी हैं, 2 ही लेना अपने, और बे नहीं लेना जो बहुत मन की है, जो हम कभी खाते नहीं है, बे 2 बनी तो बे ही ले लेंगे हमारे, और 4 रोटी खाएंगे या कि 5 खाएंगे, थोड़ा चावल खाएंगे, ये वृत्ति का परिसंख्यान कर लिया, ये भी एक तप है, फिर इससे बड़ा है तो दे रस परित्याग करके खा लो, 6 रस का त्याग करके भोजन कर लिया, या 1 रो 2 रस का त्याग करके, इस तरह से
क्षमता के अनुसार,
क्षमता के अनुसार
क्रम क्रम से उसको आयु करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उससे और ज्यादा कषायों का,
हाँ नहीं वो तो कषायों को जीतना ही तो है, थोड़ी बहुत बढ़ेंगी तो क्षमता रखो, सहन करो, सहन तो करना, भूख तो लगेगी, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही कोई उपवास करे और एक तो माहिर है कोई को भूख ही नहीं लगे, नहीं भूख तो लगेगी पर उसको सहन करने की क्षमता भी हमारे पास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि जो उपवास, जिसने आज तक उपवास नहीं किया वो जीने का स्वाद नहीं जानता, क्योंकि उपवास के दिन जीने का एक एक स्वाद मालूम पड़ता कि अब कैसे कैसे सांस गुजर रही है, हैं? पूरा जीवन उस दिन समझ में आता है कि कैसा जीवन है, वैसे तो आराम से निकल जाता है, सुबह से शाम तक खाते पीते निकल जाता है, इसलिए
क्रम जैसे आपने बताया उपवास वृद्धि परिसंख्या,
ये क्रम क्रम से कठिन तप है,
हाँ, एक से एक के बाद एक करते हैं, उपवास तो सबसे निम्न श्रेणी का,
निम्न मतलब कि बहुत आसान है,
बहुत आसान
है, हमने अभी मैंने करके देखे, इसलिए अभी पहली बार जो है रस परित्याग करके देख रहा हूँ, तो एक दिन भी बिना रस, किसी भी 6 रस के बिना भोजन करो तो कर तो लियो, फिर बाद में अंदर जाकर के वो क्या करता है तो हम देख रहे हैं अभी, तो लगता है इससे अच्छा तो उपवास ही कर लिया होता, काय को खा लिया है, उपवास बहुत आसान है लेकिन वो जो रूखा सूखा अंदर जाता है वो पूरे सिस्टम को जो है गड़बड़ करता है, तो वो आसान नहीं है, छह रस का एक आध रस ले लो तो भी ठीक है, छह रस का त्याग करके देखो। हम लोग अनुदर किया, अनुदर बहुत कठिन होता है, एक ग्रास लेकर के वापिस आ गए तो कहते कि गर्म तवे पर जैसे एक बूंद पानी की गिर गई ऐसी छुदा की तो हो गई उदीर्णा, सब सामान सामने रखा है, शुद्धि लेते ही साथ उदीर्णा हो जाती, शुद्धि लिए आहार का मन बन गया, आहार के लिए जा रहे सब सामान दिखा दिया, सब देख करके उसमें से जो पहली एक अंजलि में आ गया उत्तर लिया और वापिस आ गए। हाँ ये उनोदर उत्कृष्ट उनोदर है। और जघन उनोदर ये है कि एक ग्रास और लेने की इच्छा थी नहीं लिया बैठ गए, ये भी है, इसमें भी अतृप्ति बनी रहती है, आधा ही भोजन लिया आधा पेट लिया तो भी, तो ये कठिन तप होते जाते हैं। आचार्य श्री कहते हैं कि निरंतर कठिन कठिन तप है, लगते आसान है कि अरे वाह उपवास किया है तो कठिन है, उनोदर में तो कुछ खा लिया है आपने, खा तो लिया पर वो भीतर जाकर के जो है क्या करेगा। हाँ
महाराज जी, ग्रस्त को जैसे उपवास करना है उसको एक ये तो तप है, सम्यक दर्शन सम्यक ध्यान के बिना पंचारित्रीय होते हैं तो उसका फल नहीं था।
अब आपके तो विदिशा में अगर मिला तो वह एक थर्मामीटर सम्यक दर्शन ज्ञान को तो हम भिजवाइए होते, हम भी लगा लगा के लोगों फिर दे देते रहे, हमें अभी तक नहीं मिलो, हमें थर्मामीटर आचार्यों ने दिया है कि सच्ची देव गुरु शास्त्र पे श्रद्धा होवे, सात तत्वों का श्रद्धान होवे, चरणानुयोग की पद्धति से उसको सम्यक दर्शन हो गया, ले लो व्रत, इतने ही था। करणानुयोग की पद्धति से मत लगाना कि कर्मों का क्षय उपशम और क्षय उपशम हुआ है कि नहीं, तो कोई अवधि ज्ञानी मन परेगा नहीं, ले आओ भी बताएंगे कि हुआ है कि नहीं, इसलिए इस प्रपंच में नहीं पढ़ना। सच्ची देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा है, सात तत्वों का श्रद्धान है, हो गए आप उसके योग्य हैं, व्रत लेने के योग्य हैं, मिथ्या तप नहीं कहलाए, सम्यक तप कहलाए, क्योंकि श्रद्धा है। अब हम नहीं जानते कि भीतर हुआ कि नहीं हुआ, ये कौन पता, कोई बता सकता आज, खुद व्यक्ति जिसको हुआ वो बता देगा कि हमें हो गया, तो उसमें लिखा टूटल मंदी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो कहे कि मैं सम्यक दृष्टि हूं सो समझना मिथ्या दृष्टि है, जो ये कहे कि मुझे मालूम है मैं सम्यक दृष्टि हूं वो मिथ्या दृष्टि, उसको खुद भी भान नहीं होता। सबको आशीर्वाद कहिएगा, इसको फाइल को जब काम आपका हो जाए तो देख लीजिए, उसमें जो जो अपने को आवश्यक है वो नोट करते हैं या उसकी फोटो कॉपी करवा लें, जैसे लेट हो जाएंगे वो तो ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ेंगे अपन, और विशेष तो नहीं है, उसी को रिवाइज करने का भी थोड़ा सा रिवाइज करके वैसे भी लेट नहीं होते हैं,
थोड़ा देर से आ गए।
एक बार फिर से जो है रिवाइज कर लें, जैनाचार की क्या परिभाषा बनाएंगे, कल अपन ने परिभाषा बनाई थी जैनाचार की, क्या परिभाषा बनाएंगे, जैनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए
नियम,
जैनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए ऐसे नियम और उपनियम जिनके द्वारा हम अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त करते हैं वो कहलाएंगे, वो सब आचरण जैनाचार कहलाएगा। हमारा पूरा आचरण श्रद्धा मूलक भी है और कर्म की निर्जरा तप मूलक हमारा आचरण, हम जो भी करेंगे वो तप कर्मों की निर्जरा के लिए करेंगे या कि अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए करेंगे, इसलिए जितने भी नियम उपनियम, और वो भी किसी दूसरे के द्वारा नहीं, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए नियम उपनियम, और जो हमें अपने आत्म कल्याण में सहयोगी हैं, या कि इस दूसरे तरह से भी अपन समझ सकते हैं कि जो हमने कहा था कि क्या बोलते हैं, दर्शन हमारा क्या है, जैन दर्शन क्या है, हम अपने आत्मा के, परमात्मा के और पुनर्जन्म के बारे में जो विचार करते हैं वही तो हमारा दर्शन है, वो हमारी फिलॉसफी है। तो उस जो आत्मा के बारे में हमने और परमात्मा के बारे में जो विचार किया है, तो उस अपनी जो परमात्म दशा है उसका जो हमारे पास विचार है, उस विचार को प्रैक्टिकल में लाना, यही तो आचरण है, फिलॉसफी को जीवन में लाना। काय के लिए हम आचरण कर रहे हैं? तो वो जो हमने पढ़ा था कि हमारा एक परमात्म स्वरूप है, उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए। तो दूसरी तरह परिभाषा बनेगी कि वे नियम उपनियम जो जैन दर्शन को जीवन में फलित करते हैं वो सब जैनाचार कहलाते हैं। जैन सिद्धांत और जैन दर्शन, इन दोनों को जो जीवन में प्रतिफलित करने में सहयोगी हों, ऐसे नियम उपनियम सब जैनाचार कहलाएंगे। जैनाचार दो अलग अलग भूमिकाओं में होता है, एक शावक की भूमिका में जैनाचार का पालन होता है, एक साधु की भूमिका में होता है। शावक किसे कहते हैं? जो श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान। और शमन कौन है? जो समतावान है, या कि जो श्रम करता अर्थात तपस्या करता है। श्रमकार तपस्या भी है और श्रमकार समता भी है। तो जो समतावान है या कि जो तपस्या में लीन है, अपने कर्मों की निजरा के लिए हमेशा तपस्या रूपी श्रम या कि पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ कर रहा है, वो कहलाएगा श्रमण। अब हम देखें कि श्रावकों की क्या आचारी संहिता है, उनके लिए कितना आचरण आवश्यक है। तो कहते हैं श्रावक के लिए सबसे पहले तो सत्वेषु मैत्री, यहीं से शुरू किया था, है ना? सबसे पहले तो उसके लिए मैत्री भाव होना चाहिए प्राणी मात्र के प्रति, जहाँ गुण है गुणवान के प्रति उसमें प्रमोद भाव होना चाहिए, हर्ष का भाव होना चाहिए। तीसरी चीज, जहाँ दीन दुखी दिखाई पड़ता है वहाँ उसकी सहानुभूति होनी चाहिए, करुणा कृपा का भाव होना चाहिए। चौथी चीज, जो मोक्ष मार्ग के विपरीत चलते हैं, जो उल्टे रास्ते पर चलते हैं, भगवान के बताए रास्ते पर नहीं चलते, उनके प्रति तटस्थ रहना, उनको माने निंदा करना ना प्रशंसा करना, न्यूट्रल ही कह लीजिए उसको, माध्यस्थ भाव है, माध्यस्थ भाव है, हमें उसमें राग द्वेष नहीं करना है। ये चार चीजें पहले श्रावक की फाउंडेशन है, इतनी उसके पास होनी चाहिए। फिर कहते हैं कि अब वो क्या करे, तो दान पूजा शील और उपवास, ये उसके कर्तव्य है, ड्यूटी हो गई, वो तो उसका नेचर हो गया। ये चारों चीजें उसके नेचर में होनी चाहिए, तब उसकी ये सारे कर्तव्य जो है श्रेष्ठ माने जाएंगे। तो कौन कौन से दान देना, तो दान किसके लिए दिया जाए, पात्र और अपात्र का विवेक होना चाहिए। तो कहते हैं जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त हैं वे उत्तम पात्र हैं, जो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र में अंश रूप से या देश व्रत को धारण करने वाले, आंशिक चारित्र का पालन करने वाले हैं वे मध्यम पात्र हैं, और जो सम्यक दर्शन से युक्त हैं, व्रत नियम नहीं लिए हैं, वे जघन्य पात्र हैं। तो क्या हुआ, मुनि महाराज हो गए उत्तम पात्र, आरिका एलक छुल्लक ये सब हो गए मध्यम पात्र, और जो सामान्य गृहस्थ श्रावक हैं वो सब हो गए जघन्य पात्र। इनके लिए चार प्रकार का दान देना। चार प्रकार का दान कौन कौन सा है? आहार, औषध, आहार औषध अभय और ज्ञानदान। ज्ञानदान या कि उपकरण दान, थोड़ा ब्राड हो जाएगा। उपकरण में क्या होगा, ये भी ज्ञान का उपकरण है, इच्छी जो है संयम का उपकरण है, कमंडलू जो है शुद्धि का उपकरण है, चश्मा इत्यादि है वो भी उपकरण है, पेंसिल है, ये सब इसमें आ जाएंगे कि वो सब हमें सहयोग कर रहे हैं हमारे धर्म ध्यान में। धर्म ध्यान में सहयोगी जितनी चीजें हैं वो सब देना दूसरे के लिए, इन सब के लिए, तीनों के लिए। तो ये हो गया दान हो गया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर रखा पूजा, देव पूजा करना भगवान। अब पूजा में सब आ जाएगा, के लिए देव पूजा नहीं कही, पूजा में देव शास गुरु सबकी पूजा आ जाएगी। इसलिए श्रावक को सामान्य रूप से कहा कि देव गुरु शास की पूजा तो करना ही, बलि दूसरी पूजाएं करो चाहे नहीं करो, पहली पूजा तो देव गुरु शास की पूजा करना। तो देव गुरु शास की पूजा में उसका सारा हो गया। पूजा के मायने क्या होता, भगवान के प्रति अपना अनुराग व्यक्त करना, इसका नाम पूजा, सीधी परिभाषा है। भगवान के प्रति मन ही मन भगवान के गुणों का स्मरण करना, ये मन से पूजा हो गई। उनका वचन से गुणगान करना, ये वचन से पूजा हो गई। शरीर से द्रव्य इत्यादि समर्पित करना, हाथ जोड़ना, माथा टेकना, ये सब शरीर से काय से पूजा हो गई। तीनों से होनी चाहिए। अकेले हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, अकेले प्रशंसा करने से काम नहीं चलेगा। मन में भावना भी होनी चाहिए, उसकी मुख्यता रहेगी। बाकी चीजें जो है दोनों जितनी सक्षम होंगी वो करेगा व्यक्ति। ये पूजा, पूजा के बाद फिर शील। शील का मतलब है संयम धारण करना, अपने पांचों इंद्रियों के विषयों को सीमित कर लेना। ये हो गया शील या कि संयम। और फिर कहते हैं कि दान पूजा शील और उपवास। उपवास की परिभाषा है कि कषायों को मंद करने के लिए चारों प्रकार के आहार का समय समय पर अपनी शक्ति के अनुसार त्याग कर देना। ये हो गया उपवास। ये चार चीजें जो है शाबक के खूब जम के लिख रहे हैं, एकदम भूल न जाए बाद में। लिखा ही लो फिर सुन ले पाओ। सुन भी रहे जैसे लिखा सुन के ही जाता है, पर मन लिखने में रहता है, सुनने में कम रहता है, याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये
वो जो चार चीजें हैं वो अंतरंग भाव है और बाकी चीजें जो है बाहर क्रिया।
ऐसा क्यों कहें, वो हमारी क्वालिटी है, ये हमारी ड्यूटी है। कितना फर्क है दोनों में। मैत्री तुम्हारी क्वालिटी है शावक की,
वो
अंदर से आने वाली चीज ही है, और उसको हम बाहर व्यक्त भी नहीं कर सकते। हमको मैत्री हम कैसे दिखाएंगे। पूजा तो हमारी देखने में आ जाएगी, दान देखने में आ जाएगा, उपवास किया है तो देखने में आ जाएगा, शील व्रत का पालन कर रहे हैं तो देखने में आ जाएगा। ये बाहर प्रकट होने वाली क्रियात्मक चीजें हैं, लेकिन मैत्री करुणा और प्रमोद और माध्यस्थ ये तो बिल्कुल भाव है, अंतरंग भाव। हाँ, अलग करैक्टरिस्टिक अलग है और ड्यूटी अलग, एक्शन जो ड्यूटी जो कर्तव्य है कि भाई इतना मिनिमम इतना तो करना पड़ेगा आपको, दान पूजा शील उपवास। और वो आपका नेचर है, उसको अपना नेचर बनाओ। कई बार ऐसा हो, हाँ उसको अपना नेचर बनाओ कि मैत्री। और कई बार ये होता है कि दान पूजा शील उपवास तो आ जाता है पर नेचर नहीं है, तो गड़बड़ होती है। फिर उस व्यक्ति से लोगों को कोई संदेश नहीं मिलता। वो कहते काय के व्रति हैं, मैत्री अत्री तो है नहीं है, को उपकरण है नहीं है, इनको अपने अपनी पड़ी है, व्रत नियम संयम कर भी कर लो अपने अपने, तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहता। और उसके अंदर अगर ये देखता है कि देखो व्रति हैं लेकिन कितनी करुणा है इन पर, इनको जो है थोड़ी रास्ते से जा रहे थे पूजा करने और बीच में जो है एक गरीब शरीफ सा मिल गया, तो अपनी पूजा की सामग्री उसको दे दी, पूजा बाद में कर ले और सामग्री, मगर उसको दे दी, तो उसके उस व्यक्ति का ज्यादा असर पड़ेगा पूजा करने वाले का। वनस्पति की अपनी पूजा जो है चुपचाप करने चले जा रहे हैं और दीनहीन लोग, आज यही तो कहते हैं कि जैनी लोग अपना अपना कल्याण करते हैं, बाकी दूसरे के कल्याण की कोई सोच ही नहीं उनके पास में। कहते जरूर है कि करुणा है, बहुत अहिंसा है, कहां अपन दूसरे के कल्याण की बात सोचते हैं, कभी नहीं सोचते। अपने मंदिर जा रहे हैं तो बस फिर मंदिर ही ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि मंदिर जाते समय 100 काम करो, मंदिर जा रहे हैं तो उसके बीच में अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो हमें उसके लिए भी पूरा करना चाहिए। भले ही फिर से 16 कपड़े पैर भी घर जाने पड़े कि फिर से पहन लेंगे 16 कपड़े, बीच में छू गए। ये कब आएगा, जबकि हमारा नेचर मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ वाला होगा तब। और मंदिर में आकर के हम चीछालीदारी नहीं करेंगे दूसरे की, अगर माध्यस्थ भाव होगा तो। नहीं मानता बात तो नहीं माने, हमें क्या करना। अगर हमारी अच्छी बात उसको नहीं रुचती है तो हमारा माध्यस्थ भाव है, हमने तो यही सीखा। और नहीं तो व्रती होकर के भी अपन जो है माध्यस्थ भाव नहीं रखते तो कोई कहेगा इनके व्रतों का क्या काम, माध्यस्थ रखना चाहिए। क्यों निंदा में पड़ गए आप, क्यों प्रशंसा में पड़ गए किसी की, अपने को क्या करना। नहीं है अपने मन के अनुकूल या कि सही सही नहीं चलता, अच्छी बात कहो तो मानता नहीं, एक आध बार कही अगली बार चुप, अब आप जानो आपका काम है, हमारा माध्यस्थ है। इस तरह ये चार चीजें तो हो गई, उसके नेचर हो गई, क्वालिटी हो गई, वो उसकी उसकी ड्यूटी है, वो जो उसको रोज करना है। और इनको अगर थोड़ा सा और एलोबरेट करें तो फिर 6 बातें हो जाती हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, शास्त्र स्वाध्याय। ये तीनों जो है देव पूजा में शामिल हो। पूजा अपन ने एक कही थी तो उसमें ये सब आ गई, क्योंकि देव पूजा भी हो गई, गुरुपास्ति वो भी पूजा है, और शास्त्र का स्वाध्याय करना शास्त्र की पूजा है, अकेली आरती उतारना थोड़ी शास्त्र की पूजा है, शास्त्र पढ़ो तो वो उसका स्वाध्याय उसकी पूजा है। फिर संयम तप और त्याग, संयम तप त्याग में ये सब आ गया, त्याग में तो दान आ गया, शील और उपवास जो है वो तप में उपवास आ गया, और शील मतलब संयम, सो संयम तो है, संयम तप और त्याग, ये छहों चीजें चार के अंदर आ गई। बाद बात को ये छह चीजें बनी, पहले ओरिजिनली अगर आप कहें कोई पूछे तो ओरिजिनली सबले धवला में सबसे पहले लिखा है दान पूजा सील वासो चहु व्याहनम सावयानम धम्भो, श्रावक के ये चार ही धर्म हैं। बाद में फिर और आचार्यों ने सरल करने के लिए एक श्लोक ही लिख दिया, देव पूजा गुरु पास्ती संयम तप त्याग, ये एक श्लोक है इसका। तो ये छह चीजें बात को हुई। ये इतना जो है सामान्य रूप से श्रावक का आचरण है, पाक्षिक श्रावक भी इतना आचरण करता है। फिर कहते हैं कि अगर वो अब और अधिक व्रत नियम संयम लेना चाहता, आठ मूल गुण उसके लिए अनिवार्य। अब आठ मूल गुणों का प्ररूपण अलग अलग से किया है, ये भी अपन समझ लें ताकि उसका भ्रम नहीं हो। एक तो है कि तीन मकार, मध्य मांस और मधु। मकार मतलब जो मां से शुरू होने वाली चीज है, तीन है, मध्य भी है, मांस भी है और मदिरा भी है। तो कहते ये तीन चीजों का त्याग और पांच उदंबर फलों का। उदंबर मतलब कंपोजिट फूड कहलाते हैं, अंजीर वंजीर तो अपने परिचित में है, बाकी और जो खाने में नहीं आती, बड़ के पेड़ में फल लगे रहते हैं, पीपल में लगते हैं फल, वो कोई अपन लोगों में कोई नहीं खाते, और लोग जो है जंगल वंगल में जो खाते रहते वो खाते हैं। तो कंपोजिट फूड नहीं खाना, ये पांच, अंजीर भी जो है उसी में आता है। इनके भीतर त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है, जो साइंस के हिसाब से है। तो आज उसमें ऊपर से पहले उसके आपके फर्मेंटेशन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए, उसमें फर्मेंटेशन ही कहना चाहिए, फर्मेंटेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन नहीं, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के लिए एक पतैया ब्लास्टोकॉर्ड नाम का एक चार इंद्रिय जीव होता है, वो उसके भीतर जाता है। हैं सही बोल रहा हूँ? तो वो उसके भीतर जाता है और वहां पर अपने एग वगैरह देना शुरू करता है, और एक देकर के वो उसके लिए घर है उसका, अंडे देने के लिए, उसमें भीतर अंडे देता है और बाहर निकल जाता है। तो उसके जो उसका जो पराग है वो उसके पंखों पे चिपक जाता है, वो फिर दूसरे में जाता है, तो परागण की क्रिया भी होना शुरू होती है और उसके अंडे भी पलते हैं, वो फिर आ जाता है उसमें और अंडे बड़े हो करके और उसी में जीव बन करके और बहुत संख्या में हो जाते। तो पहले कहते हैं कि न उमर फोरे न पखा उड़ाए, पखा उड़ाए मतलब पंखियां उसमें, अगर इनको फोड़ के खाया जावे तो अलग दिखेंगे, इनको तो सीधे खा लेते हैं लोग, गप कर जाते हैं उसको। और इनकी हाँ 80 वैरायटी है पूरे इंडिया में इनके। हाँ, और हमने उसका पता किया कि कैसे लगते हैं, तो जैसे ये डाल है तो डाल पर ऐसी एक डंडी में नहीं लगेंगी, जैसे गुच्छे में ऐसे नहीं लगेंगे, इसी में इसी शाखा में ही इतने सारे लग जाएंगे, उसी से चिपके हुए, ऐसे नहीं कि बीज अलग से एक डगाल में लटके हों, ऐसे नहीं लगते, उसी में लगते। इससे मालूम पड़ जाता है कि ये उदंबर फल है, इतनी मोटी शाखा है, उस शाखा में ही उगा है। सब हाँ वो कंपोजिट फूड कहलाता है, प्याली नुमा एक ऊपर लेयर होती है, उसके भीतर सारे फूल है, वो फूल कंपोजिट फूड कहलाता। फॉल्स फूड मतलब जो फल नहीं है, झूठा फल है, लगता फल है पर है वो फूलों का गुच्छा, सारे फूल उस प्याली नुमा एक उसमें अंदर रहते हैं। तो ये नहीं खाना। पांच ये हो गए बच्चों के मूल गुण हैं, ये आठ। बड़े लोगों के मूल गुण कौन से हैं? तो कहते हैं कि तीन मकार का त्याग और पांच अनुव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौरी, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, या कि परिग्रह परिमाण, परिग्रह तो नहीं आएगा, परिग्रह परिमाण, ये पांच जो है अनुव्रत पालन करे तो होगा। एक और दृष्टि है जिसमें कि पांच आठ विभिन्न प्रकार से बताए हैं, मैं कल जो है उनको देख रहा था, मुझे याद नहीं रहते। हाँ वो पूरा मालूम हो तो बोलिएगा, नहीं तो गड़बड़ होएगा। हाँ वो मुझे देख करके मैं फिर बताऊंगा उसको। एक दृष्टि और है आठ मूल गुण की, जिसमें क्या किया है उन्होंने कि रात्रि भोजन त्याग क्या किया, पांच, ऐसा सोचिएगा, मध्य मधु मांस तो ज्यों का त्यों, और पांच उदंबर को एक मान लिया तो कितने हो गए, चार हो गए। फिर उसके बाद देव दर्शन और रात्रि भोजन त्याग, जल गालन सात है, और जीव दया आठ हो गए। ये है इस प्रकार से भी आठ मूल गुण माने।
बाकी तो ठीक है, परिग्रह का कैसे पालन,
वो अपन देखते हैं अपन कि कैसे करेंगे। ये जो हमने कहा ना कि पांच अनुव्रत और तीन मकार का त्याग, ये आठ मूल गुण हैं। तो इनको अपन समझेंगे कि पांच अनुव्रत कौन से हैं। और अनुव्रत किसे कहते हैं? अनु का मतलब है छोटा है? और अनु का मतलब है जैसे पीछे पीछे जाना, अनुगमन बोलते हैं, अनुसरण करना है। और थोड़ा सा हाँ, अनुसरण अनुगमन एक ही बात है। अनुकरण, अनुशब्द जो है वो पीछे पीछे चलने के अर्थ में भी आता है और छोटे के अर्थ में भी आता है। अनुव्रत मतलब छोटे व्रत, मतलब आंशिक रूप से, पार्शियल। जब हम व्रतों को आंशिक रूप से पालन करते हैं तब वे अनुव्रत कहलाते हैं, जब पूर्ण रूप से उन पांचों पापों का त्याग कर देते हैं तो वे महाव्रत कहलाते हैं। और दूसरी परिभाषा जो अपन ने अनुसरण की बताई वो कैसी? तो कहते जो व्रत मुनियों के पीछे पीछे, महाव्रतों के पीछे पीछे चलने की शिक्षा देते हैं वे सब अनुव्रत कहलाते हैं, क्योंकि पीछे है वो। जस्ट ऐसा नहीं है, मार्ग एक ही है पर कोई आगे है कोई थोड़ा पीछे है, हाँ फॉलो कर रहे हैं, तो फॉलोइंग वो कह लीजिएगा उनको, ये ज्यादा अच्छा है कि हाँ अनुसरण करने वाले व्रत हैं, इसलिए उनको अनुव्रत कह रहे हैं। ऐसे व्रत जो महाव्रतों को फॉलो कर रहे हैं उन्हीं के अंश हैं कहना चाहिए। वो पांच होते हैं व्रत, किसे कहते हैं? व्रत की परिभाषा क्या बनाएंगे? बहुत अच्छी परिभाषा तत्वार सूत्र में है, एक सूत्र याद रहे तो, हिंसा रतस्ते ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम। पांच पापों से विरक्त होने का नाम ही व्रत है। व्रत की परिभाषा हो गई। अपन कहते थे ना कि व्रत नियम ले लो, तो वास्तव में पांच पापों से आंशिक रूप से हो चाहे पूर्ण रूप से हो वो कहलाएगा व्रत। अब अहिंसा अनुव्रत किसे कहेंगे? तो कहते हैं कि दूसरे को न मारेंगे, न मारने का नहीं, न मरवाएंगे, न कोई मारेगा तो उसकी अनुमोदना करेंगे, संकल्प पूर्वक। आज ही सुबह आया था, संकल्पात कृतकारित मननाद्योग्य त्रयस्य चर सत्वान नहीं नस्ति यत्त दाहु तदकृत चौर्या दुपारमनम है, ये सुबह अपन ने पढ़ा था। संकल्प पूर्वक मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से हम किसी जीव को बाधा नहीं, पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, यही अहिंसा अनुव्रत है। मतलब स्थूल रूप से हिंसा का त्याग, त्रस जीवों का, विशेष रूप से सिर्फ त्रस जीवों का। स्थावर जीव पानी का उपयोग करेंगे, लाइट का उपयोग करेंगे, पंखा का उपयोग करेंगे, साफ करेंगे, तो स्थावर जीव नहीं बचा सकते। तो कहते स्थावर का त्याग भी नहीं करवा रहे हम अनुव्रत में। अनुव्रत में तो मोटे मोटे दो इंद्री से लेकर के पंचेंद्री, इनको संकल्प पूर्वक इरादा करके नहीं मैं इनको मारूं, जबकि कोई काम ही नहीं है फिर भी। अब आप रोटी बना रहे हैं तो मर रहे होंगे, ये बात अलग है, फिर भी हमने सावधानी रखी थी कि लकड़ी देख दाग के बनाई थी, गैस जला रहे थे तो उसमें कोई जीव तो नहीं फंसा, वो भी हमने साफ कर लिया था। अब इसके बाद भी कोई आकर के उसमें मर गया है तो फिर उसकी हमारी वो आरंभ की हिंसा है, तो ये भी अपन इसमें देख लें। निकलना है, आ जाने दो भाई, थोड़ा थोड़ा आप और आगे आ जाए, थोड़ा सा कम है ना स्पेस। तो अपन क्या कह रहे थे, पहले ये समझ लें कि संकल्प पूर्वक त्रस जीवों का घात नहीं करना, ये हो गई अहिंसा अनुव्रत। तो कहते हैं कि फिर शावक को क्या और भी हिंसा होती है क्या? जब आपने कहा संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करना तो और भी हिंसा होती? कहते हैं हाँ, चार प्रकार की हिंसा होती, ऐसा भी डिवाइड वो कर सकते हैं अपन हिंसा और अहिंसा के बारे में। एक तो संकल्प पूर्वक हिंसा इंटेंशनली, फिर होती है उद्योग जो अपन धंधा करेंगे उसमें होने वाली हिंसा, और फिर एक विरोधी हिंसा अपनी सेफ्टी के लिए, डिफेंस के लिए जो हिंसा की जाती है वो भी है, और फिर एक आरंभी हिंसा संसार के जो कार्य करेंगे घर गृहस्थी के, उन सब के लिए होने वाली हिंसा को भी आरंभी हिंसा कहते हैं। इस तरह से संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा, ऐसी चार प्रकार की हिंसा होती है। डॉक्टर लेट हो गए, वहीं बैठे रहने दें। जगह तो यहाँ बैठने वाले सबके पास है। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि जगह तो बैठने वाले सबके पास है। बैठे और आए, अच्छा नहीं आए सर,
लच गया,
कोई बात नहीं। तो हमने अभी तो शुरुआत ही की है, पांच अनुव्रतों को अपन पढ़ रहे हैं।
तीन दिन से लेट हो रहा हूँ, विशेष कारण
तो अहिंसाणु व्रत वो कहलाता जिसमें हम त्रस जीवों की संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग कर देते हैं और बाकी हिंसा हमने त्याग नहीं की है। हम घर गृहस्थी के कामों में होने वाली हिंसा का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, अभी उद्योग धंधे में होने वाली हिंसा का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, और कोई हमारे ऊपर हमला करता है तो अपने बचाव के लिए कोई हिंसा होती है तो उसको भी हम नहीं बचा पा रहे हैं, पर संकल्प पूर्वक हम नहीं मारेंगे किसी को, ये इतना ही अनुव्रत में शामिल है। ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे जिससे कि दूसरे का घात हो जाए, स्थूल झूठ का त्याग। ऐसा सच भी नहीं बोलेंगे जिससे दूसरे पर विपत्ति आ जाए, ये भी ध्यान रखना है। झूठ तो बोलेंगे नहीं लेकिन ऐसा सच भी नहीं, सत्यमपि विपदे, जिससे दूसरे पर विपत्ति आ जाए ऐसा सच भी नहीं बोलेंगे और झूठ तो बोलेंगे नहीं। ऐसा झूठ जिससे दूसरे पर विपत्ति आए और ऐसा सच, क्योंकि सच भी झूठ कहलाएगा अगर विपत्ति। हमारा अहिंसा, ये अपन ध्यान रखें, अहिंसा हमारे व्रतों की प्रमुख है। हमें सारे और दूसरे जो व्रत पालन करना है, सत्य और अचौरी वगैरह, वो सब काय के लिए करना है, अहिंसा व्रत के समर्थन के लिए करना। व्रत तो वास्तव में एक ही अहिंसा व्रत है, उसके सपोर्टिंग के लिए ये पांच व्रत हैं अहिंसा के पालन के लिए। तो कहते हैं कि सच हम ऐसा बोलेंगे या झूठ हम ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे कि दूसरे पर विपत्ति आ जाए, दूसरे का घात हो जाए, ये बहुत कठिन है। मेरे ख्याल से अहिंसा का पालन तो अपन कर लेते हैं, चीटी सुबह ही मैंने कहा था कि चीटी बीटी तो बचा लेते हैं अपन, पर दूसरे को हमारे वचनों से, दूसरे को हमारी क्रिया से, दूसरे को हमारे मन से भाव से कितनी पीड़ा पहुंच रही है, इस चीज का हम ध्यान नहीं देते। हम अपने आसपास ही ध्यान नहीं देते हैं, दूर तो छोड़िएगा। किसी की भी मैं बहुत देखता हूं कि किसी की भी कोई कमजोरी अपने को मालूम पड़ जाए तो उसका कितना गलत फायदा उठाते हैं। ये सब क्या है, हिंसा तो है, सॉफ्ट कॉर्नर, किसी की एक मजबूरी, किसी की कमजोरी या कि किसी का अज्ञान, उसका अपन मजा लेते हैं, वो सब हिंसा है। तो इस हिंसा से बचना आज के समय में सबसे ज्यादा मुश्किल है। ऐसा सच भी नहीं बोलना जिससे कि
एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अदर्स वीकनेसेस, वो तो आज की
जनरल, इस पर ध्यान ही नहीं जाता हमें, मालूम हाँ कल्चर में शामिल हो गए, हमें आपकी कोई ना कोई चीज मालूम पड़ गई, अब हम उस सॉफ्ट कॉर्नर को आपके टच करेंगे और आप हमारे कब्जे में। बद बंधन आदि जो इसके जो सुबह पढ़ा रहा था मैं कि छह अतिचार लगते हैं उसमें से बंधन क्या है, तो बंधन किसी को आप साकल से थोड़ी बांध रहे हो, लेकिन आपने उसको अपने कमजोरी उसकी पकड़ के आपने अपनी ग्रिप बना ली उसके ऊपर, अब वो आपके अनुसार चलेगा, वो करें, ये भी बंधन है, इससे भी बचना चाहिए सूक्ष्म रूप से अगर देखें तो। ये हो गया, फिर उसके बाद कितना हो गया, जल्दी से भूल जाते हैं, संकल्पी हिंसा में ये हमें ध्यान रखना है कि हाँ सत्य की बात, स्थूल सत्य स्थूल झूठ का त्याग कर दिया, ऐसा झूठ जिससे दूसरे पर विपत्ति आती हो और ऐसा सच जिससे दूसरे पर विपत्ति आती हो। थोड़ा सा स्पेस बना ले वहीं पर, ये हो गया। फिर उसके बाद अचौरी, अचौरी किसे कहते हैं, निहितम वा पतितम वा सुमिस्मृतम वा परस्तु मविश्रष्टम नहरति यत् चान्ये तद्ग्रस्त चौर्या दुपारमणम। श्लोक बोलने से मुझे याद हो जाता, किसी की गिरी हुई, किसी की रखी हुई, किसी की भूली हुई, किसी के द्वारा बिना दी गई किसी भी चीज को नहीं उठाना। किसी की कह रहे हैं, अपने परिवारजनों की नहीं, अब परिवार में तो सब चीजें सबकी हैं, पर फिर भी अगर उसके उठाने से दूसरे को संक्लेश पहुंचता है तो उठाने से पहले या कि उठाने के बाद उसे सूचना दी जाए घर के व्यक्ति को भी कि ये इतने रुपए यहां पर रखे थे मैंने ले लिए हैं, मेरे काम के थे, या कि बेटे ने जो है आपकी अनुपस्थिति में उठा करके लड्डू खा लिया, उसको भूख लगी थी।